نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير دور قرآن 2023 ڈی کیو 2023 آج ہم اس میں 20th پارہ کنٹینیو کریں گے سورۃ قصص کے شروع سے آج کا جو ہمارا دن ہے اور اس میں خاص طور پر سورۃ قصص کے اینڈ کے قریب جو ایک تھیم آئے گا اس کی بنیاد پہ آج کا ہمارا پورا پارہ اور آج کا سیشن کہہ لیجئے کہ جو روٹیٹ کرے گا اس میں عظمت صحابہ کا مین نقطہ کیا ہے نہیں میں ہیں کو دیکھنا لکھئے نہیں کچھ نہیں ہے یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے ہے کیا کرے مہنگائی ہے بجلی نہیں پانی نہیں یہ نہیں وہ نہیں کیا کرے گزارا نہیں ہوتا یعنی زندگی میں جو ایک دن میں نہیں بولتے ہیں نا اس کو ذہن میں لائیے صحابہ کی خوبی کیا تھی کہ انہوں نے نہیں میں ہیں کو دیکھنا سب ہے الحمدللہ آپ یہ کہہ دیں نہیں میں ہے کو دیکھا سب ٹھیک ہے کھانا ہے الحمدللہ بجلی ہے الحمدللہ صحت ہے عافیت ہے الحمدللہ اور یہ ان کا رویہ خاص طور پہ جو ان کی زندگی میں جو ان کے ساتھ معاملات ہوئے تھے اس میں تو جھلکا اور وہ کیا تھا کہ جب بھی کبھی ان کے اوپر کوئی مشکل ڈالی گئی تو وہ اس کو کیسے آسانیوں میں بدلتے تھے ایک واقعہ سنا دیتی ہوں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور خلافت تھا 14th ہجرہ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کے دن دیکھ لیجئے ایران فتح ہوتا ہے اس وقت ایران کا جو بادشاہ تھا اس کا نام تھا یزد گرد گرد ہوتی ہے نا گرد سے بولے یزد لکھ لے اور اس کے سپہ سالار کا نام آپ سب کو پتہ ہے رستم کون تھے فاتح ایران سعد بن ابی وقاص مسلم لیڈر بنے ان کی قیادت میں جو مسلم لشکر ایران میں داخل ہوا اس کی تعداد تقریباً 20,000 تھی 20,000 سے بھی پلس جبکہ رستم کی جو فوج تھی اس کی تعداد 100,000 تھی تو ایک مسلمان کے مقابلے پہ 5 کافر تھے اس کے باوجود اسلام کو فتوحات کی خبریں سن کر یعنی کہ مسلمان جیت گئے اہل اسلام فتح یاب ہو گیا یہ خبریں سن کر جو ایرانی حکمران تھے وہ بڑے خائف تھے خوف زدہ تھے ان کو خوف آ رہا تھا کہ یہ 5 گنا کم ہیں ہم اتنے ہیں تو یہ کیا ہو گیا چنانچہ انہوں نے سعد بن ابی وقاص جو یعنی لیڈر تھے ان کو بلوا بھیجا کہ ذرا اپنا سفیر بھیجیں یعنی ایمبیسیڈر ہم کچھ بات کرنا چاہتے ہیں چنانچہ صحابہ کرام میں سے کئی گروہ وفد بن کر مدائن گئے شہر کا نام ہے اور رستم اور وہ جو ان کا یزد گرد تھا اس سے بات چیت شروع ہو گئی یہ لوگ بڑے ہی بے خوف تھے حتیٰ کہ جو ربی روبا لکھتے ہیں نا جیسے روبائی بن عامر مسلم فوجی تھے ایرانی دربار میں جب داخل ہوئے نا تو یہ گھوڑے پر بیٹھے ہوئے تھے سیدھا اپنا گھوڑا لے کر تخت تک پہنچ گئے اور جو نیزہ تھا ہاتھ میں اس کو قالین میں گاڑ کر اس سے اپنے گھوڑے کو باندھ دیا اب یہ بھی بڑا عجیب و غریب منظر تھا ایرانی حکمران ان کی بے باکی سے بڑی خائف ہوئے اس سے پہلے کہ ان کو کچھ کہتے کہ یہ کیا کرے ان کے دل مرعوب ہو گئے اور جو گفتگو ہوئی آج آپ بھی سیرت کی بکس میں اور ہسٹری کی بکس اس میں پڑھیے جب یہ سارا کچھ ہو گیا اور وہ ان سے بالکل نہیں ڈر رہے بالکل مرعوب نہیں ہیں بالکل خوف زدہ نہیں ہیں کوئی مدد نہیں مانگ رہے کوئی ایڈ نہیں مانگ رہے تو بادشاہ خود کو غصہ آ گیا وہ تو یہ چاہتے ہیں نا کہ اللہ سے نہیں ہم سے مانگے خیر وہ جو بادشاہ تھا نا وہ بگڑ گیا اس نے غصے میں آ کر کہا کہ اگر تم سفیر نہ ہوتے تو میں تمہیں قتل کروا دیتا تم لوگوں کو تمیز ہی نہیں ہے ہم سے ڈرتے ہی نہیں ہو تمہارے لیے میرے پاس کچھ نہیں ہے اور جو اپنے سردار سعد بن ابی وقاص کو کہہ دو کہ رستم ایک بہت بڑی فوج لے کر تمہاری طرف آ رہا ہے اور تم سب لوگوں کو قادسیہ جگہ کا نام ہے قادسیہ کی خندق میں وہ دفن کر دے گا دھمکیاں خیر جو یزد گرد تھا نا اس نے پوچھا کہ تمہارے اس وفد میں سب سے باعزت کون ہے جیسے آپ سب میں سے کوئی پوچھے سب سے آنریبل کون ہے ادھر تاکہ میں اس کے سر پر مٹی کا ٹوکرا رکھ دوں مٹی کا ٹوکرا رکھ کر इसको यहाँ से वापस कर दूँ, यानी बेइज्जती करूँ उसकी। लोग सब चुप थे, खामोश। खैर, वफद में से एक शख्स जिनका नाम था आसिम बिन अमर खड़े हुए, यानी अपने आप को पेश कर दिया कि अगर बेइज्जती करनी है तो मेरी कर लो। कहने लगे, तुम जिस शख्स को चाह रहे हो ना, वो मैं हूँ। लो, तुम मेरे सर पे मिट्टी का टुकड़ा रख दो। फिर भी कोई नहीं दबरा। फिर उसने लोगों से पूछा, भाई सुनाओ इसके बारे में क्या राय है। लोगों ने कहा, हाँ हाँ ये हमारे बड़े मोअज़्ज़ज़ शख्स है, यानी अपने मेन लीडर या अपने अमीर को रुस्वा नहीं होने दिया, वरना तो सबको पता था कौन है हमारे बड़े। उनका नाम नहीं लिया। एक आम शख्स उठा, कहने लगा, आई एम हेयर। यसकर्त ने मिट्टी से भरा हुआ एक टोकरा मंगाया और उस शख्स के सर पे रख के हुक्म दिया, जो इसको यहाँ से निकाल दो और बाहर वाले देख ले कि कितनी इनकी बेइज्जती हुई है अंदर कमरे में बंद होकर। आसिम बिन अमर मिट्टी का टोकरा लिए हुए महल के बाहर आ गए। उसको उन्होंने अपनी सवारी पर रखा और तेज़ी से रवाना होकर साद बिन अबी वक्कास जहाँ ठहरे हुए थे उधर पहुँच गए। अब तसव्वुर में आ रहा है, हम होते बाहर निकलते रोने लगते, ये है बेइज्जती कर दी, किसी को पता ना चले, कोई मीडिया वाला ना देख ले, यहाँ सहाफ़ी ना आ जाए, एंकर ना आ जाए, ये ना वो नहीं ना। मट्टी साथ लेके अपने लीडर के पास पहुँच गए और खेमे में जाकर मट्टी का टोकरा सरदार के सर पे रखा और सारी कहानी सुना दी। अब आगे जो किस्सा है ना, जो जुमले जो असल में मैं आपको और आप अपने आप को सुनाएंगे, वो सुन लीजिए। रावी कहते हैं कि साद बिन अबी वक्कास ने क्या कहा, तुमको खुशखबरी हो, अल्लाह की कसम, अल्लाह ने हमें उनके इख्तदार की कुंजियां दे दी। उन्होंने तो अपने हाथ से मट्टी देकर ये दे दिया कि ये मुल्क अब तुम्हारा है। धरती माँ कहते हैं ना मट्टी को। कहने लगे, मट्टी से तो उन्होंने अपना मुल्क आपको दे दिया और ये खुशखबरी है अल्लाह की तरफ से, एक हिंट है कि तुम लोग अब दिन ब दिन बढ़ते जाओगे, तुम्हारी इज्जत बढ़ेगी, तुम्हारा शर्फ बढ़ेगा और ईरान पस्ती और जिल्लत और नाकामी में गिरते जाएंगे। अब आप ज़रा सुनिए, मुस्लिम वफद को महल से निकाल देने के बाद यज़दगर्द ने ये वाक़या रुस्तम को सुनाया, अपने ही करिंदे को, कि मैंने तो आज ये कारनामा किया। जैसे आज की ज़ुबान में खबर लग जाए कि आज ये कर दिया वो कर दिया, और मिट्टी का टोकरा जो था उसको उनके सर पे रखने को हमाकत करार देकर उसको सुना रहा है। रुस्तम ने कहा कि नहीं, वो आदमी अहमक नहीं था, यानी हंस रहे कि देखो इतना बेवकूफ़ था, मैंने उसके सर पे मिट्टी का टोकरा रखा, वो चल पड़ा। हम जैसे होते ना, तो वो जो गए थे ना वहाँ निगोसिएशन के लिए, वहाँ जिहाद शुरू करके जंगो जिदाल करके और लड़ाई लगा के आए होते और सब मर मरा जाते, बाद में कहते हमने दीन के नाम पे जान दी है, और ये बाद में मजाक उड़ा रहा है, कह रहा देखा कितना अहमक था। रुस्तम ने कहा, नहीं वह अहमक नहीं था, खुदा की कसम वो लोग तो हमारे मुल्क की कुंजियाँ लेकर चले गए। वल्लाही ज़हबू बी मफातीहा अर्दीना। आप पढ़ना चाहते हैं तो अलबिदाया व निहाया अरबी बुक है इमाम इब्ने कसीर की, जिसमें दुनिया के शुरू से लेके आखिर तक के हालात, उसकी जिल्द नंबर 7 के पेज नंबर 42-43 पे ये वाक़या पढ़िएगा। अब आप ज़रा से इस वाक़े को लीजिए और आज की इस थीम को अपनी ज़िंदगी में लाएंगे हम सब। और वो क्या है कि सोचने के दो तरीके होते हैं। एक है कि आप अपने हालात में घिर कर सोचते हैं, हाय मेरे साथ क्यों नहीं है, नहीं है, ये भी नहीं, वो भी नहीं, मियाँ भी नहीं प्यार करते, सास भी नहीं करती, बच्चे भी निकम्मे निकले, पैसे भी नहीं है मेरे पास, मेरे पास कुछ भी, हर वक्त रोना ही एक लगावे नहीं का, इस मुल्क में कुछ नहीं, इधर के हुक्मरानों में कुछ नहीं, यहाँ की यूथ में कुछ नहीं, यहाँ की औरतें बेकार, यहाँ के मर्द सारे करप्ट, नहीं 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 नहीं। और कहते कि हालात ही ऐसे हैं, जो कि देख लो, हम झूठ थोड़ी बोल रहे हैं। जबकि दूसरा एक अंदाज लिखिए, हालात से ऊपर उठकर सोचना। पहला तरीका नफ़रत का है तो दूसरा मोहब्बत का है, यानी एक है नफ़रत और मोहब्बत जैसे जज्बात के तहत राय कायम करना, और दूसरा है नफ़रत और मोहब्बत जैसे जज्बात से बिल्कुल बुलंद होकर अपनी राय कायम करना, यानी कोल्ड फैक्ट्स, डोंट बी इमोशनरी। आप किसी की मोहब्बत या नफ़रत में इतना ना भट जाएं कि आपको हर चीज़ मोहब्बत में ठीक ठीक लगे और नफ़रत में गलत गलत लगे, यानी मोहब्बत में है लगे और नफ़रत में नहीं नहीं लगे। हमें नफ़रत होती है उन लोगों से जिनके बारे में हम गलत कमेंट्स दे रहे होते हैं, और जिनसे मोहब्बत होती है उनकी गलतियों को भी हम डिफेंड कर रहे होते हैं। आम तौर पर जो लोग हैं ना, वो पहली किस्म के होते हैं जो हालात से मुतासर होकर सोचते हैं। वो फौरी जज्बात के तहत अपनी राय कायम कर लेते हैं। ये मियाँ बीवी की जितनी लड़ाइयाँ होती हैं ना, ये फौरी रिएक्शन होता है, अगले ही 2 मिनट के बाद ठीक हो जाते हैं। एक स्पीकर है, मुबल्लिग हैं, दुबई में होते हैं, तो वो कहते हैं, उनके पास लोग आते होंगे ना मसले पूछ के, कहते हैं बीवी को ज़रा सी बात में गुस्से में 3 तलाकें देते हैं हमारे मर्द, और अभी टावर की चौथी मंजिल तक नहीं आए होते तो उनको रिग्रेट शुरू हो जाता है। फिर नीचे आके गाड़ी में बैठते हैं, फिर हमारे पास मस्जिदों में आके कहते हैं मौलवी साहब कोई हल निकालो, वो तो मैंने गुस्से में तलाक दे दी थी। कहते अभी तुम टावर के टी से भी नहीं उतरे और तुम्हें रिग्रेट हो गया, तो थोड़ा सब्र कर लेते हैं, और तुमने कर भी 3 कट्ठी दी हैं तो अब तो तुम्हारा घर बिगड़ गया है, ये गलत है। आप नहीं कहते उसने मुझे गुस्सा दिलाया, और हम क्या कहती हैं खवातीन, मैं तो बड़ी बाखलाक थी, मैं तो इतनी स्माइली थी, इस घर में आके मेरे माथे पे तेवरी चढ़ गई, इन्होंने मेरी मत मारी, खाना जल जाए, आप कहते बच्चे ने मत मार दी, जाके थप्पड़ उसको मारेंगे, तुमने मेरी मत मार दी, रोटी जल गई, ये इन्होंने मुझे बिजी कर दिया था, देखो ना मैं इनके लिए फ्रिज में से कुछ लेने गई, दूध उबल गया। हालात के तहत, ये बहुत बड़ी खूबी बता रही हूँ, शायद आपको कहीं ना लिखी हुई मिले, हालात के तहत जीने वाले डिप्रेशन एंग्जाइटी प्रॉब्लम्स का शिकार रहते हैं, उनकी शुगर भी बढ़ जाती है, उनका बीपी अक्सर ऊपर नीचे रहता है, और वो फ्यूज़ हो जाएंगे बहुत जल्दी। लिखिए, ज़िंदगी में बहुत सी फ्लक्चुएशन आएंगी आपके मेरे, बोलिए अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल, रदीतु बिल्लाहि रब्बन, आपके चेहरे पे वो सुकून हो जो आपके अंदर के उठते हुए ज्वार भाटे का रास ना खोले, आप अंदर से टूटे पड़े हैं, कभी कुछ चीज़ें होती है ना इतने क्रैक आ जाते हैं कि बस पकड़ो तो टूट जाएंगी, लोग कहते छोड़ दो इसको इधर, ये भी नहीं छेड़ना, अंदर से आप इतने टूटे हुए शिकस्ता, और लोगों में आप मजबूत खड़े, कहते कुछ भी नहीं हुआ, ये क्या बड़ी बात थी, ये थे साहबा। और आज भी अल्लाह उसी को अपने कामों के लिए चुनेगा जो इतना स्ट्रॉन्ग नर्व्स वाला होगा, लिखिए आयरन नर्व्स वाले थे साहबा, जो बात बात पे भड़क उठे, और जिनको वो कहते हैं ना कि तीली दिखाओ और वो आग लग जाए, ये बेकार है, वो सब चले जाएं वापस, वो साहबा की तरह नहीं बनेंगे, वो रदी अल्लाह अनहु व रदुआन में नहीं होंगे, उनको हर बात में अपनी जान नहीं प्यारी होगी। हाय मुझे ये कहते, ऐसे लोग ना फौरन, वो कहते हैं ना जिसको किसी की दुम पे पाँव रखना, ज़र्रा सा किसी ने कुछ कहा ख़त्म, साहबाए कराम ऐसी तमाम चीज़ों से ऊपर थे, वो हालात और जज्बाती महरकात से ऊपर उठकर खुद अपने फैसले के तहत ये तय करते थे कि इन्हें इस वक्त क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और ऐसा बंदा बेहतरीन शख्स है, किसी कीमत पे इसको हासिल कर ले, जाने ना दे, माफ़ी मांग ले, प्यार कर ले, लाखों मांगता उसको लाखों दे दीजिए, ना जाने दें। और साहबा की सिफत ने उनको बेपनाह हद तक ताकतवर बना दिया था, इन्हें मट्टी दी जाती थी और वह इसको फतह के ताज की तरह कबूल कर लेते थे। जिस वाक़े को लोग बेइज्जती के हम मानी समझ लेते थे, इससे वो इज्जत का मफहूम निकाल लेते थे, और जो तजुर्बा लोगों को झुंझलाहट में मुबतला करता था, इससे वो अपने लिए यकीन की गिज़ा हासिल करते थे। तो लिखिए सहाबे कराम वो पुरसरार बंदे थे, इंसानी तारीख के वो अनोखे अफराद थे जो उसर में युसर का राज पा लेते थे, इस बारे में उसर और युसर भी साथ चलेगा, और फाइन नामा उसरी युसरा तक जब पहुँचेंगे तो आपको ये बात बड़ी अच्छी तरह समझ चुकी होगी कि साहबा जो नाकामी से कामयाबी को निचोड़ते थे, नाकामियों में से ऐसे निचोड़ेंगे ना तो नीचे कामयाबी का जूस निकलेगा, और इन जूस को आप ब्लेंडर में डालते हैं तो जूस निकलता है, ऑलिव्स को निचोड़ते हैं ना आप तो ऑयल निकलता है। सहाबे कराम की तकलीफ़ें जो हमें लग रही हैं कि उनके लिए उसर था, उसको निचोड़ेंगे ना तो उसमें से भी यूसर निकला था, और जो आज तक फैला हुआ है। ये वो लोग थे कि जो शिकस्त के वाक़े को फतह के वाक़े में तब्दील कर लेते थे, जो मायूसियों की तारीकी में उम्मीद की रोशनी देख लेते थे। रखने वाला इनके सर पर मट्टी का टोकरा रखता था, नोट किया आपने, और वो समझते थे कि इसने खुद ही अपना मुल्क हमारे हवाले कर दिया। बी चीयरफुल, बी रिलैक्स्ड, तो समझ आया आपको नहीं में मैं क्या होता है, नहीं में है सब है, मियाँ साहब कहते हैं ग्रोसरी है बस, अब जाए किधर, नहीं है कि है ग्रोसरी, ईद के कपड़े बन गए बच्चों के? नहीं होंगे मेरे वाले, अभी जूते नहीं आए ना, वो छोटे के तो अब ऐसे ही छोटे हो गए, उसके तो बड़े आ गए थे पिछली दफ़ा। आज से आप इस तरह की बने, आपके मियाँ आपके गुलाम बन जाएंगे। अल्लाह की पनाह, वो अल्लाह के बंदे रहे तो अच्छे हैं। तो साहबे कराम की ये खूबी आज के इस बारे में हम कैसे देखेंगे, ख़ास तौर पे मालदार साहबा, इस बारे का जो मेन थीम सूरत कसस की एक आयत पे जाकर बताने वाली हूँ आपको। अभी लिख लें, 12:20 के पर्सनालिटीज़ में एक पर्सनालिटी नहीं है, अभी गिनेंगे आप सारे मालदार साहबा। और वो कौन कौन थे? अब्दुर्रहमान बिन औफ, ज़ुबैर बिन अवाम, तलहा, उस्मान गनी रज़ी अल्लाहु अन्हो, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु अन्हो, उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाहु अन्हो, अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाहु अन्हो, अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाहु अन्हो, सईद बिन आस रज़ी अल्लाहु अन्हो, अब्दुल्ला बिन मसूद, शुरू में गरीब थे बाद में ये भी अमीर हो गए, अब्बास और इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हो, अबू हुरैरा, शुरू में इतने गरीब थे कि भूख से मिर्गी के दौरे लोग समझ लेते, बाद में इतना माल इनके पास आ गया था कि वो कहते हैं ना कि मिट्टी में हाथ डालो तो सोना बन जाए। जी, दौलतमंद सहाबा हमारे आज के पारे के थीम है। और सहाबा नहीं, सहाबियात भी थी दौलतमंद। उम्महातुल मोमिनीन भी बड़ी पैसे वाली थी, सबसे प्यारी तो हमारी माँ खदीजा रजी अल्लाह अन्हा। दौलतमंद ताबईन भी थे, बाद में हिस्ट्री पढ़ेंगे, दौलतमंद उलमा और सूफिया कराम भी थे। फ़र्क एक है, लिख ले, पैसा सहाबा से लेकर उलमा कराम जो आज के भी दौर में है उनके पास भी बहुत है, लेकिन आगे चलिए लिखिए, फ़र्क सिर्फ ये कि सहाबा ने दौलत से भी आखरत कमाई। आगे बढ़िए, आपको मुझे ये करना है। आज हमने लोगों को बहुत गिल्ट दिया, माजरत है, ये जो सदी गुजर गई ना 19th और अब ये 20th है, ये इसका तोहफा है। बस दीनदारों ने तबलीग और तालीम के नाम पर पैसे वालों को गिल्ट दे दिया। नतीजा क्या हुआ कि लोग वो काम जो पहले खुल के करते थे ना, अब छुप के करने लगे। आप कहते हैं कि इल्म की महफिलों में उस दौर के हुक्मरान बैठे होते थे, और इल्म वालों की क्या शान थी। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह के पास उस दौर के खलीफा का पैगाम आया कि आप मेरे घर आकर, यानी मेरे महल में आकर शहजादे को पढ़ाएं। ये आम लोगों की क्लास में जाके नहीं बैठेगा, आखिर खलीफा का बेटा कोई मजाक है? तो इमाम बुखारी का क्या जवाब था? इल्म की शान ये है कि वो उधर आकर बैठे जहाँ बाकी भी हैं, मैं नहीं जाऊँगा। तो फिर क्या किया होगा उन्होंने? डांटा डिपटा, कोई रियायती को चंदा देते थे इमाम बुखारी की किसी मस्जिद में, तो देना छोड़ दिया, चुपके से अपने शहजादे का नाम जाकर उधर जमा करा दिया। ये इल्म वालों की शान थी। पैसे वाले लोग जूतियाँ सीधी करते थे। हारून रशीद का दौर पढ़ के देखिए आप, के लोग कहते थे कि हम इतना कुछ दे के अपनी रियाया के दिल में अपनी मोहब्बत नहीं ला सके, इन इल्म वालों को तो देखो, जेल से जनाजा उठा था एक इमाम का, और देखने वाले ने जेल की दीवार से बाहर झांक के देखा तो हदे निगाह तक लोगों की भीड़ थी। जमे गफीर उसने कहा था कि इमाम तू जीत गया, तू जेल में रहने के बावजूद लोगों के दिलों में जी रहा है, और मैं हुक्मरान होकर लोगों की बातें सुनता हूँ। तो मालदार सहाबा आज के इस पारे की शख्सियत है, और उन्होंने इसको कैसे लिया था, माल के बारे में सहाबा कराम का तर्ज अमल क्या था, हम इसको देखते जाएंगे। सहाबा कराम का तर्ज अमल क्या था माल के बारे में, चंद जुमले ले लें, और इसमें तो मेरा दिल है एक पूरा सेमिनार करूं रमज़ान के बाद कभी, इसलिए कि पैसा तो कमाना ही है हमने। जिनके पास पैसा है वो जाके आग लगा दें उस नोटों को, और जिनके पास नहीं है वो हसरत में और चोरियां चकारियां करें, और गन पॉइंट पे और तावान पे 5-5 करोड़ रुपए मांग कर आपके मर्दों को अगवा कर लें। ये सारा आज इस वक्त इसलिए हुआ है कि इम्बेलेंस्ड है। देखिए, जो आप अपने किसी को कहते हैं ना हेल्प योर सेल्फ, खा लो, कितना को खाएगा? 1, 2, 4, 6, चुप। और आप कहते हैं खबरदार हाथ ना लगाना तो वो चोरी खाएगा, ऐसा मुलाजिम छुप के खा जाता है जिसको आप जायज़ हक भी नहीं देंगे।
बिल्कुल इसी तरह
जब हम दीन के नाम पे लोगों को अल्लाह की दी हुई रुख्सतें भी छीन लेते हैं ना, तो फिर वो छुपके करते हैं। तो सहाबा ने माल के साथ क्या किया? नंबर एक, माल को छोड़कर ईमान की खातिर हिजरत की। आज ये भी जुमला लिख लें, हिजरत क्यों हुई थी? जान बचाने के लिए? नहीं। माल बचाने के लिए? वो तो मां छोड़ रहे थे। ईमान बचाने के लिए। अब्दुर्रहमान बिन औफ करोड़पति थे उस दौर के हिसाब से। जब निकले घर से, बीवी साथ थी, बच्चा साथ था। थोड़े दूर गए तो रोक लिया घर वालों ने, दौलत भी थी साथ। अपने ही भाई आ गए, कहने लगे मियाँ सब किधर चले? कहा छोड़ रहा हूँ तुम्हें। कहा अच्छा, ये साझा खाता था, ये हमारी शराकत थी, पार्टनरशिप थी, ये पैसा हमें इधर दें, ये हमने मिलके कमाया हुआ। कहा चलो पकड़ो, पोटली दे दी। उस वक्त पैसे बैंकों में नहीं होते थे, हाथों में थैलों में होते थे। पैसा दिया। थोड़ा सा आगे गए, अपने ही माँ बाप आ गए। कहा ये बच्चा, ये हमारा पोता है, हमारी नस्ल है, तुम इसको कहाँ लेके जा रहे हो? कहा अच्छा ये पकड़ लो। बच्चा भी ददियाल को दे दिया। थोड़ा आगे गए तो ससुराल वाले आ गए। ये हमारी बेटी को किधर लेके जा रहे हो? कहा क्या हुआ? कहा इसलिए थोड़ी दी थी कि इसको इधर उधर धक्के खिलाओ। बीवी उसके मैके वालों ने ले ली। मक्का से मदीना तकरीबन 500 किलोमीटर, कितनी सौबतों से पहुँचे होंगे। और जब नबी सल्लम के पास पहुँचे ना, तो तन पे कपड़े भी पूरे नहीं थे। कितनी भूख लगी होगी, कितनी रास्ते में गर्मी पसीने आए होंगे। आपने कहा अब्दुर्रहमान सुनाओ कैसे आए? कहा अल्लाह के नबी, सिर्फ अपनी जान और अपने आप को बचा के लाए हूँ, ईमान और अपने आप को। आपने फरमाया कि अब्दुर्रहमान तूने नफ़े का सौदा किया। आपने इनको कहा कि इधर फलां के साथ इनकी मवाखात में इनका नाम लगा है, जैसे आप हज पे जाते हैं तो आपके नाम खैमों के बाहर लिखे होते हैं ना, इस मुल्क के। तो अल्लाह के नबी ने बडीज बना दिए थे। अंसार ने तो दिल खोले थे, घर भी खोल दिए। घर देना क्या बड़ी बात है? उन्होंने कहा कि अब्दुर्रहमान सब आपका है। कहने लगे बहुत शुक्रिया, जजाकल्लाह खैर, दल्लूनी इला सूक, मुझे बाजार की राह दिखाइए। ताजिर थे ये, और जिसने काम किया होता है ना, और जिसको करना आता है, उसके पास 1 रुपया भी ना नो कैपिटल का, रासुल माल, वो भी अल्लाह की रहमत से रोटी कमा लेगा अपने लिए। बाजार में गए, कोई छोटा मोटा सौदा लिया, इधर से लिया, इधर दिया किया करा के अपनी रोजी रोटी खुद कमाई। और आपको पता है कि अब्दुर्रहमान जब दुनिया से गए, कितना माल था इनके पास? सोने के डल्ले, बड़े बड़े पत्थर, कुल्हाड़ियों से उसके टुकड़े कर करके विरसा को बांटा गया था। अल्लाह के नबी की अजवाज को इन्होंने अपनी वसीयत के हक में से दिया था 1/3 के अंदर, और उनके पास ठीक ठाक सोना आया था। तो क्या हुआ था? इस्लाम ने एक दफ़ा सारा ले लिया इनसे हिजरत के मौके पे, तो वापस दिया, उससे ज़्यादा दिया। अल्लाह उससे ज़्यादा देता है, वो बार बार देता है। आप एक बार देते हैं, अल्लाह बार बार देता है, इतना देता है कि आपने तो कभी तसव्वुर भी नहीं किया होता। तो सहाबा ने माल को अल्लाह के रास्ते में हिजरत की रुकावट नहीं बनाया। आज हमारा घर माल, हिजरत तो छोड़ दे, दूर की बात है, हमने तो भी उसका शीर नहीं चखा। हम इस माल में इतने मसरूफ़ हैं, हम कुरान नहीं पढ़ सकते, हमारी नमाज़ें लेट होती हैं, हम उम्रे और हज पे नहीं गए आज इतने साल हो गए। कभी माल कमा रहे हैं तो कभी संभाल रहे हैं, कभी घर बन रहा है तो कभी हमारा, आप कह लीजिए कि बच्चा पढ़ रहा है तो कभी बच्ची की शादी है। साहबा ने अपने किसी नेकी के और रिचुअल में इन माल को जगह नहीं बनाया। ये नहीं करना, आपने भी ये करेंगे तो माल जैसी कोई कुंद छुरी भी नहीं है। कहते कि माल सांप की तरह होता है, अगर आप इसको सही तरह से नहीं करेंगे तो ये आपको डस जाएगा, और ये माल अगर आप सही बना लें तो ये आखिरत की कश्ती के चप्पू हैं, चलाते जाओ और आखिरत की कश्ती तुम्हारी बहुत दूर चली जाएगी। फिर अगली बात है कि उन्होंने माल को अल्लाह का फजल समझा। हाज़ मिन फ़ज़ली रब्बी, हम भी लिखते हैं घरों के ऊपर, लेकिन पता नहीं वो फजल से हासिल हुए हैं या किसी चोर दरवाजे से घर लिया, और उस घर में हो क्या रहा है ये नहीं पता। फिर कस्बे हलाल और मेहनत को तरजीह दी, तिजारत और काश्तकारी की, और माल से आखरत कमाई। एक मेरी फेवरेट बुक है, उसका नाम ही है, आप सर्च करिए गूगल में, मालदार सहाबा। मेरी ख्वाहिश है कि मैं वो बुक पढ़ाऊँ, ख़ास तौर पे मैं जब दुनिया में इस वक्त उम्मत मुस्लिमा के मर्दों को जिहाद फिल माल में मुलव्वस देखती हूँ ना, और सारी ज़िंदगी कमाते रहते हैं कमाते रहते हैं, और आज उनका इंतकाले पुर मलाल होता है तो बच्चा बच्चा सपारा लेके बैठ जाता है और उनको इस आले सवाब कर रहा होता है, और वो कुरान जिसकी ज़रूरत जिंदों को थी वो मर्दों को बख्शा जाता है, वो सूरत फातिहा जिसमें अहदिनस सिरातल मुस्तकीम थी, हिदायत की ज़रूरत जिंदों को थी, वो उसकी कब्र पे जाके पढ़ रहे हैं लोग। और ज़ालिकल किताबु लिल मुत्तकीन था वो, ज़ालिकल किताबु लिल अस्हाबिल कुबूर बना के पढ़ते रहते हैं। ये राहदारी की सूरह बकरा पढ़ी जा रही है। वक्त ही नहीं हमारे भाइयों बेचारों के पास, हमारे तो मर्दों के दिमागों तक में भी ये नहीं है कि ये किताब फातिहा से नाज तक मुझे भी समझ आनी चाहिए। ये बेगम का ही काम नहीं है कि वो एक से एक कोर्स करती रहे, और वो अगर उसको फैसिलिटेट कर रहे हैं तो हिस्सा तो है, लेकिन हिदायत कब मिलेगी? जब ज़िंदगी में खुलेगी। हमारी किताब खुलती है मरने के बाद, जब हमारा नाम अमाल बंद, इज़ा मातल इंसान इनक़ते अमलुहू। मुस्लिम की रिवायत है कि जब इंसान मर जाता है तो उसका नाम अमाल मुनक़ते, यानी अकाउंट क्लोज सीज्ड। आज भी आपको पता है कि जब किसी का डेथ सर्टिफिकेट इशू होता है ना, किसी भी मुल्क में ऐसे ही होगा, मुझे अमेरिका का पता है, जब डेथ सर्टिफिकेट इशू होता है ना, पूरे मुल्क में उसके नाम पे कोई अकाउंट है, कोई कार्ड है, कोई चीज़ है, एकदम सीज हो जाता है। ऐसा ऑटोमेशन में उन्होंने डाला हुआ है कि क्योंकि हमारे जैसे तो उनकी पेंशन नहीं खाते रहे 20-20 साल तक बाद में। ऐसा हुआ हमारी अपनी फैमिली में, हुआ पाकिस्तान में डेथ हुई थी उनकी, और इस डेथ सर्टिफिकेट जो पाकिस्तान में उनसे लिया गया उसकी बेस पे पूरे अमेरिका का उनका सारा सब चैप्टर क्लोज, पासपोर्ट इनवैलिड, शिनाख्ती आईडी कार्ड, जो ABCD घर, क्योंकि हमारे यहाँ तो बंदा मर जाता है 10 साल तक उसके नाम चलते रहते हैं कागज़ों में, किसी ने कहा फलां गवाही भी डालते हैं तो मर्दों की, कि ना आए तो ना दे। तो समझ आई आपको, साहबे कराम के पास इतना वक्त था कि वो इस ज़िंदगी में किताब समझे कमाते थे, लेकिन ये ऑब्सेशन नहीं था, क्रेविंग नहीं थी, और मकसद हयात नहीं था कि मेरी ज़िंदगी का मकसद तेरे लिए माल कमाना, मैं इसीलिए तेरा शौहर, इसीलिए मैं तेरा दीवाना। ये शेर बन गया वैसे, हालांकि मेरे शेर सारे गलत होते हैं। आज हमारे मर्दों गरीबों का मुझे तरस आता है, मुझे रहम आता है कारोबारी हजरात पे, सर खुजाने की फुर्सत नहीं है। जुम्मा भी जो पढ़ते हैं उसमें भी कैलकुलेटर चल रहा होता है दिमाग में कि जो ग्राहक आके बैठा है उसको जाकर क्या जवाब देना। तो बस दुख इतना ही है, आप ज़रूर इस मौजू को पढ़ें, मर्दों को पढ़वाएं। रिस्क की कुंजियाँ बुक ले लें, मेरी पढ़ी हुई ना सुने आप, सिर्फ किताब से पढ़ लें। रिस्क की कुंजियाँ डॉक्टर फजल अली साहब की किताब है, हमारी वेब के क्या ऊपर, हमारी बल्कि यूट्यूब पे मौजूद है उसकी रिकॉर्डिंग। एक साल जो कोरोना शुरू हो गया था और सब कुछ सीज था ना उस साल प्रेप सेमेस्टर में माशाल्लाह पढ़ाई थी, मेरा ले 2020 होगा। आप अगर सर्च पे जाइए ना यूट्यूब की प्ले लिस्टों में, 20s की लिस्ट में जो ज़ादुल ख़ैर है उसमें पढ़ाई थी, क्योंकि सब तरफ गम ये था कि ये तो ये बंद हो गया, ये बैंकरप्सी हो गई, अब उधर हो गया, वो हो गया। तो बहरहाल आइए पारा 20 की दुआ पे चलते हैं। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से रिवायत है कि अल्लाह के नबी ने मुझे एक दुआ सिखाई, आप भी इसके अल्फाज़ पे गौर करेंगे तो आपका भी दिल करेगा बाद में कि आपको भी आती हो। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन खैरि कुल्लिही आजिलिही व आजिलिही मा अलिमतु मिन्हु व मा लम आलम, वाऊज़ु बिका मिन शर्रि कुल्लिही आजिलिही व आजिलिही मा अलिमतु मिन्हु व मा लम आलम। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन खैरि मा सअलका अब्दुका व नबियुका व अऊज़ु बिका मिन शर्रि मा अअज़बिही अब्दुका व नबियुक। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल जन्नता व मा क़र्रब इलैहा मिन क़ौलिन औ अमल, वाऊज़ु बिका मिन नारी व मा क़र्रब इलैहा मिन क़ौलिन औ अमल, वअस्अलुका अन तजअल कुल्ल क़ज़ाइन क़ज़ैतहू ली खैर या खैरा। अगर कंटिन्यू करेंगे तर्जुमा सुन लीजिए, और ये इब्ने माजा की रिवायत है 3846 नंबर की। ए अल्लाह, मैं तुझसे हर भलाई का सवाल करता हूँ, वो जल्द मिलने वाली हो या बदेर, यानी अभी मिले या देर से मिले, बस मिल जाए, और मुझे इसका इल्म हो या ना हो। कितनी प्यारी दुआ है, कभी आज तक आपने मैंने ऐसे मांगी कि अल्लाह मुझे वो मिल जाए चाहे मुझे पता भी ना लगे। सुभान अल्लाह, मैं तेरी पनाह चाहता हूँ हर शर से, वो जल्दी तारी होने वाली हो या बदेर, और वो मेरे इल्म में हो या ना हो। ए अल्लाह, मैं तुझसे हर उस खैर का सवाल करता हूँ जिसका तुझसे तेरे बंदे और नबी ने सवाल किया, और मैं तेरी पनाह चाहता हूँ हर उस शर से जिससे तेरे बंदे और नबी ने तेरी पनाह चाही। ए अल्लाह, मैं तुझसे जन्नत और इसके करीब करने वाले कौल व फेल का सवाल करता हूँ, इस पे तो ज़ोर से आमीन कहिए। ऐसे थोड़ी जन्नत में चले जाएंगे, पहले उसके तरफ ले जाने वाले रस्तों पे चलेंगे तो चलेंगे ना। आप देखिए कि एक जहाज़ में जितने भी लोग बैठे हैं जाएंगे तो सारे पहुंचेंगे तो एक ही जगह पे ना, इसी तरह आप इर्द गिर्द जो लोग हैं ना, पहले उनको तो देखिए कि उनकी टिकट किस मुल्क की है, जहन्नम की कि जन्नत की। सोहबत सही कीजिए, आप खुद सही हो जाएंगे। और अगर आप बिगड़े हुए ना, तो फौरन किसी अच्छी सोहबत को ज्वाइन कीजिए, ताकि आपका बिगाड़ कम हो और बाकी भी लोग आपके साथ आए। तो यही कहा कि कॉल फेल तो पहले ठीक हो, फिर ही जन्नत मिलेगी। लोग आपके लिए जन्नत की दुआएं करते रहते हैं, और आप जन्नत के रोड में नहीं है, आप जन्नत के जहाज में नहीं बैठे। अब आपकी माँ बैठकर दुआएं मांगती रहे कि बेटी पाकिस्तान आ जाए, बेटी पाकिस्तान आ जाए, बेटी पाकिस्तान आ जाए, और बेटी पाकिस्तान की बजाय आप कह लीजिए ऑस्ट्रेलिया के जहाज में बैठी हुई है। पहुंचेगी क्या माँ की दुआ से? एकदम जहाज है वो वहां से निकल कर आके पाकिस्तान रुक जाएगा? हमारी दुआएं ऐसी हैं बेतुकी, कर कुछ और रहे होते हैं, मुंह इधर का है, रुख उधर, जाना उधर है। दुआएं हमारी बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, अल्लाह बड़े काम ले ले, और हौसले हमारे इतने छोटे होते हैं, बुज़दिलम इतने होते हैं, हर वक्त नहीं 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 कर रहे होते हैं। तो है ही नहीं हमारे पास, नहीं कराएगा अल्लाह आपसे, आपकी दुआ गलत है, रॉन्ग नंबर है। आप सारा दिन कॉल करते रहें किसी को, नंबर गलत मिला है, वल्ला ही वो आपको नहीं मिलेगा। कोई गलत नंबर हुआ तो वो उठा के कह देगा कि बीबी आप अगर आपने कॉल की तो मैं आपका नंबर ब्लॉक कर दूंगा, लेकिन अगर नंबर वो किसी का है ही नहीं एग्जिस्टिंग, तो सारा दिन क्या आप 4 दिन लग रहे, नहीं मिलेगा। पहले अपने आप को उस लेवल पे लाइए जो अल्लाह ने मूसा को कहा, आप सूरह ताहा में पढ़ के आए हैं, ए मूसा हमने आपको बहुत ही आजमाया, फतन्ना का फतूना सुम्मा जीना, फिर हम ले आए तुझको, क्या आला कदर नहीं। उस लेवल पे, उस क्राइटेरियन पे तुझे ले आए जो हमारा स्टैंडर्ड होता है। देखिए आप समझिए, दुनिया में मिसालें तो बीसियों मिल जाएंगी, वक्त नहीं है। बस स्टैंडर्ड होता है ना बड़ी चीज़ों का, बड़े कंपनीज का, फैक्ट्रीज है, यानी ब्रांडेड कपड़े हैं, वो एक स्टेम्प भी अलग हो जाती है ना, तो वो कपड़ा डिस्कार्ड कर देते हैं, आउटलेट्स में चला जाता है, वो रीसेलर्स को दे दो जाके, उनको दे दो, थोड़े पैसे कम करके बेच दो, क्यों जी ये फला मोहर टेढ़ी लग गई। हमारा स्टैंडर्ड ये नहीं है, हर खास तौर पर एक्सपोर्ट इम्पोर्ट में होता है। अल्लाह का स्टैंडर्ड इतना हाई है कि डिस्कार्डेड लोग ज़्यादा हैं और एक्सेप्टेड थोड़े हैं, रिजेक्टेड माल ज़्यादा है और सिलेक्टेड माल कम है। मिसाल दे दूँ, हदीस है, मैंने अपने पास से नहीं ये बात की, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि इंसानों में से लोगों की, अच्छे और बुरे की जो तमीज़ है ना, वो ऊँटों की तरह है, हर 100 ऊँटों में से एक काम का होता है। अगर ये हदीस सामने रखो ना, तो आउट ऑफ एवरी 100% 1% विल बी गुड या ओके होगा। और वो हदीस आपने सुनी है कि हज़रत आदम को अल्लाह ताला कहेंगे कि आप जन्नतियों और जहन्नमियों को अलग करो, कहा क्या रेशो रखूँ, कहा हर 1,000 में से एक जन्नती, 999 जहन्नमी। तो ये सुनकर वो जो सारी कैफियत है ना कि बूढ़े हो जाएंगे, हर 1,000 में से एक काम का, तो फिर आप और मैं पहले अपना स्टैंडर्ड सेट करें। हमारी अधूरी कोशिशें दीन के नाम पे, काम शुरू कर लेते हैं पूरा नहीं होता, प्रोजेक्ट शुरू करते हैं हमारे किनारों पे कोई नहीं पहुंचते। तो अल्लाह के नबी को आप देखिए, इतनी बात मैंने जिस जुमले पे बोल दी, इसको दोबारा सुनिए। ए अल्लाह मैं तुझसे जन्नत और इसके करीब करने वाले कौल और फेल का सवाल करता हूँ। आज से आप एक काम कीजिए, एक हफ्ता पूरा इसकी ट्रेनिंग लें। ये नहीं कहे कि अल्लाह मुझे जन्नत दे, नहीं, ये एक हफ्ते के बाद कहेंगे। एक हफ्ता आप ये कहें कि अल्लाह मुझे उन कामों के करीब कर दे जो जन्नत में ले जाते हैं, मेरे मुंह से वो बातें निकले जो जन्नत के करीब कर दें, मेरे अफाल, मेरे हाथों के, मेरे एक्ट्स, मेरे डीड्स, मेरी फलां चीज़ फलां ऐसी हो जो मुझे जन्नत में ले जाए, फिर आप बेशक जन्नत की दुआ ना करें, आप खुद ही पहुँच जाएंगे। जब आप फ्लाइट में बैठ जुगे, तो आपने तो मक्का पहुँचना ही पहुँचना है इंशाल्लाह। हम बैठते भी नहीं और दुआएं भी बड़ी करते हैं। बहरहाल, और अपोजिट भी सुन लीजिए, और मैं जहन्नुम और करीब करने वाले कॉल ऑफ फेल से तेरी पनाह चाहता हूँ, और मैं तुझसे सवाल करता हूँ कि हर फैसला, इसको सुनिए, हर फैसला जो तू मेरे बारे में करे, इसे मेरे हक में बेहतर करार दे दे। इससे भी ज़्यादा खूबसूरत जवामिल कलिम होंगे। अब ये तो पूरी लंबी दुआ है ना, मेरी अपनी एक आदत है इस दुआ में से, जो ये जुमला है ना कि अल्लाह अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन खैरी मा सअलका अब्दुका व नबीयुका, इसको नोट कर लें। कभी समझ नहीं आ रही होती क्या मांगू क्या नहीं, जैसे मिसाल है कि रिवायती बात है ना कि खाना काबा को देखते ही दुआ कबूल होती है ना, या रोज़ेदार की इफ्तारी के वक्त है ना, कबूलियत के वक्त दुआओं के, तो उस वक्त ये दुआ कर दिया करें, अल्लाह मैं तुझे वो सब मांगता हूँ जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मांगा, और उस सब से तेरी पनाह में आता हूँ जिससे पनाह मांगी। आपको पता आपने इस एक दुआ में 700+ तो वो दुआएं मांग ली जो अब नक्शे पे आ चुकी है मसनून दुआओं के नाम पे, और जो भी हदीसों की किताबों में छुपी हैं और क्यामत तक निकलती रहनी है उसका तो मुझे भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता। इतनी जवाब में दुआ है ये, तो आप इसका स्नैप लेके इसको प्रिंट आउट करा के रख लें कहीं भी, और ये बहुत कम मिलती है किताबों में, लेकिन दुआ बहुत अच्छी है। तो बहरहाल साहबे कराम ने अल्लाह के नबी से बहुत कुछ ले लिया अपनी हिकमतों के साथ। अब दुआ करें कि अल्लाह हमें भी दे।